तो आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। प्रभु जी इसके सब लोग मेरे पीछे दौड़ाइए, अपने हाथ जोड़िए दोनों और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ज्ञान तुमिरांदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 15। तो जो आधार है इको कम कर सकते हैं ना। इको को कम करो बना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे
हरे कृष्णा। तो भगवद गीता भगवान भगवद गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन को प्रदान करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं और वास्तव में कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आदि नहीं, ये धर्म नहीं है, ये क्या है? विश्वास है, एक फेथ है। लेकिन धर्म का मतलब है वो चीज जो किसी वस्तु से अलग नहीं की जा सकती। तो आत्मा का धर्म, अलग अलग चीजों का अपना अपना धर्म है। मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं और अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवद गीता का उपदेश हमें प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के लिए नहीं थे। भगवान के वो नित्य भक्त हैं, सखा हैं, उनके पार्षद हैं, तो उनको भगवद गीता के संदेश की आवश्यकता नहीं है। बल्कि भगवद गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान कृष्ण हमें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से इस माइक को हम माध्यम बनाकर आपके तक लाउड जोर से आवाज पहुंचा रही है, तो ये जो प्रवचन है वो इस माइक के लिए नहीं है, किसके लिए है? हमारे लिए है। तो उसी प्रकार से भगवान ये जो भगवद गीता का संदेश अर्जुन को प्रदान करते हैं वास्तव में देखा जाए अर्जुन के लिए नहीं है, लेकिन केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम निमित्त बनो और सारे संसार को ये सुखी होने का मैसेज, सुखी होने का संदेश प्रदान करो। तो भगवद गीता का वर्णन सारे पुराणों में और सब स्थानों में आता है महान महान जो आचार्य हुए हैं, भक्तगण हुए हैं, वो वर्णन करते हैं भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता, कि यदि किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का सौभाग्य उदित होता है तो उस व्यक्ति को भगवत गीता का आश्रय, भगवत गीता को सुनने का या समझने का और अप्लाई करने का भाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवत गीता किंचित अधीता, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भगवत गीता को थोड़ा भी समझता है, थोड़ा भी उसके संपर्क में आता है, उसका अध्ययन करता है, तो वो व्यक्ति शास्त्र कहते हैं यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति की चर्चा कौन नहीं करेंगे, यमराज के दूत नहीं करेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो भगवत गीता यह हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। क्या है? हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना हमारा जो जीवन है वो खोखला है, खाली है, उसमें अर्थहीन है, निरर्थक है, निष्फल है, शास्त्र कहते हैं। तो भगवत गीता को हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को समझना चाहिए और उसका आधार बनाकर हमें क्या करनी चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए। आजकल सो कॉल्ड बहुत सारे साधुज, महात्माज, गुरुज, हाँ आप सब टेलीविजन आदि में भी देखा देखते होंगे, तो वो लोग भगवत चर्चे का आधार भगवत गीता आदि नहीं बनाते, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लेकिन वास्तव में सारे चर्चा का जो आधार है भगवत चर्चा का, वो भगवत गीता है। क्योंकि उसके बिना जो बाकी चर्चाएं हैं, ज्ञान आदि है, वो निष्फल है। एक बार एक साधु किसी लाइब्रेरी में गए अमेरिका में, तो वहां एक अमेरिकन व्यक्ति ने कहा, महाशय आप भारत से आए हो और आपकी गीता का तो बहुत महत्व है, आइए आइए देखिए लाइब्रेरी में उसकी क्या स्थिति है। तो उस साधु को वो ले गए लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में गए तो क्या देखा कि भगवत गीता को बिल्कुल नीचे रखा है टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारी किताबों को रखा है। कहा कि देखो तुम्हारे इस गीता की क्या हालत है। साधु महाराज कुछ नहीं बोले, उन्होंने क्या किया, भगवत गीता को पकड़ा, जो सारे किताबों की क्या थी, नीचे थी, उसके ऊपर सारी किताबें एक के ऊपर रखी हुई थी, उस भगवत गीता को पकड़ा और जोर से ऐसे खींचा, खींचने मात्र से क्या हुआ, सारी किताबें गिरने लगी, गिर गई, अस्त व्यस्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में गीता क्या है, आधार है। तो उसी प्रकार से सारे ज्ञानों का आधार भगवत गीता है, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि इसके समान व्यक्ति को पवित्र करने वाली विद्या कोई नहीं है, और इसके समान जिसको प्रभुपाद कहा करते थे किंग ऑफ नॉलेज, कि सारे विद्याओं का वो राजा है। इसलिए भगवत गीता के बारे में वर्णन आता है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर है। अभी इस जगत में हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, तो और शास्त्रों को कहा वो पढ़ पाएगा, पढ़ पाएगा कोई व्यक्ति? इसलिए यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद्विनी श्रुतः, कि सारे यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का आधार लेता है, भगवत गीता का अध्ययन करता है अपने रेगुलर लाइफ में, तो उसको बाकी किसी शास्त्रों को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी सारे वेद उपनिषद आदि वो तो भगवान के श्वास से निकले हैं। कहां से निकले हैं? सांस से। लेकिन भगवत गीता कहां से, कौन सी वाणी है भगवान के? मुख वाणी, मुख निश्चित भगवान के मुख से निकली है। इसलिए सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, जितने भी वेद शास्त्र क्या है, शास्त्र की सरल व्याख्या या सरल डेफिनेशन क्या है, कि जो भगवत वाणी है भगवान के, भगवान ने जो बोला या दिया वो शास्त्र है। शास्त्र हम सब अपने मत मनमाने ढंग से उसको लिख नहीं सकते ना प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र को टेक्निकल भाषा में अपौरुषेय ज्ञान कहा गया है। अपौरुषेय, इस भौतिक जगत के पुरुष का पास वो सामर्थ्य नहीं है जो शास्त्र के ज्ञान को दे सकता है, इसलिए वो अपौरुष है। क्यों? क्योंकि वो भगवत वाणी है, और भगवत वाणी इतनी पावरफुल है कि जो अचूक है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आज के जीवन में भी हम देखते हैं भगवत गीता, भगवान ने 5000 साल पूर्व, 5000 समथिंग साल पूर्व अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया था ये जो ज्ञान है। तो बाकी जो वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि है, कुरान है, महाभारत है, रामायण आदि है, तो शास्त्र कहते हैं कि सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, इन सारे शास्त्रों को गाय से तुलना की गई है। अभी कौन व्यक्ति इसमें निचोड़ निकाल सकता है, लेकिन ऐसे सारे शास्त्रों को इकट्ठा किया जाए और वो शास्त्र गाय के समान है, और भगवान कृष्ण ने क्या किया, उस गाय का दोहन किया। दोहन मतलब क्या है? दूध निकालना। दूध सार होता है कि नहीं गाय का? गाय घास आदि खाती है, जल आदि पीती है, टहलती है चारागाह में, लेकिन वो क्या देती है? हरा दूध। ऐसा कोई मशीन बना पाया है साइंटिस्ट कि आगे से हरी घास डालो और पीछे से क्या निकालो? दूध। चाहे हम जितना मर्जी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, जितनी मर्जी मशीनें उत्पन्न करें, हाँ, लेकिन जो भगवान, जो प्रकृति की जो देन है, भगवान ने जो जो चीजें दी हैं, हाँ, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, दोगधा दोहन करते हैं सारे शास्त्रों का, और वो बछड़ा कौन है? अर्जुन है, उसको पीता है। दुग्धम गीता अमृतम महान, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो दूध है जो गीता अमृत के समान है, और इसी कारण से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन का जो आधार है वो भगवत गीता को बनाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता को जीवन का आधार बनाने से व्यक्ति के पास दो चीजों का ज्ञान आ जाता है। एक ज्ञान क्या है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, या इस भौतिक जगत के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हो सकता, जिसको भगवान ने गीता में कहा पद्म पत्रम वाम्बसा। जिस प्रकार से जल में एक कमल का फूल होता है, एक कीचड़ में कमल का फूल होता है, लेकिन कभी भी वो कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवत गीता का आधार लेता है, वास्तव में उसका जीवन उस कमलवत हो जाता है, कमल के समान होता है। और दूसरा, उसके पास इतना सामर्थ्य आता है कि वो इस भौतिक जगत को बहुत सरलता से छोड़कर अपने अंतिम समय में भगवान के धाम वापस जा सकता है, क्योंकि हम यहां आए नहीं, परमानेंट रहने के लिए आए क्या इस जगत में? कौन कह सकता है कि मैं यहां परमानेंट रहने के लिए आया हूं? लेकिन केवल हमें आभास हो रहा है कि मुझे परमानेंट लाइफ है, करोड़ों करोड़ों साल में जीवित रहने वाला हूं, ये केवल क्या है? आभास है, इल्यूजन है, भ्रम है, मोह है, शास्त्र कहते हैं। इसलिए भगवत गीता हमें जगाती है। क्या करती है भगवत गीता? हमें जगाती है, और भगवत गीता एक डायनामिक लाइफ जीने की कला सिखाती है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है भगवत गीता के मेरे जीवन में, नहीं चाहिए मुझे। शास्त्र कहते हैं कि दो कारण है जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि नहीं, क्या ये सब करना है, भगवत गीता नहीं चाहिए मुझे। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि दो गलत धारणा है व्यक्ति के जीवन में, जिसके कारण वो भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत गीता आदि से वो दूर भागता है। पहली गलत धारणा क्या है उसमें, कि ये गलत धारणा है कि वो सोचता है आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ ये रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है ये? रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर हो जाऊंगा तब ये सब चीजें करूंगा। अभी अभी क्या है, अभी शुरुआत इतने जल्दी क्यों? लेकिन हम देखते हैं कि महान महान जो लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन का आधार भगवत गीता बनाई। और महात्मा गांधी कहा करते थे, जब भी मुझे डाउट, संशय, बहुत संशयग्रस्त हो जाता था, दुखी हो जाता था, तभी मैं, मुझे कोई भी मेरे जीवन में आशा की किरण नजर नहीं आती थी, ऐसी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है हर एक व्यक्ति के, तब मैं क्या करता हूं, भगवत गीता को खोलता हूं और भगवत गीता के श्लोक मुझे नया जीवन प्रदान करते हैं और मैं हंसने लगता हूं सारे दुखों को छोड़कर। इवन आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे महान, इवन आपके मेट्रो के जो क्या नाम था उनका, श्रीधरन, हमारे भक्त उनको लास्ट ईयर मिले थे, श्रीधरन हमारे मंदिर आए थे दिल्ली टेम्पल। तो श्रीधरन ने कहा कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता जब तक भगवद गीता के दो श्लोकों को पढ़ के नहीं जाता, ये उसका सिद्धांत जीवन का। इस प्रकार से भगवद गीता या शास्त्र या भगवत सेवा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए पहली गलत धारणा क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि ये अभी नहीं रिटायरमेंट का प्रोग्राम, रिटायर हो जाऊंगा, सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा तब, है कि नहीं। व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है और वो सोचते नहीं अभी जिम्मेदारियां हैं बहुत, लेकिन व्यक्ति यदि गंभीरता से सोचे कि मृत्यु के अंत क्षण तक वो जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होता। हम उसको बल्कि शास्त्र कहते हैं पंच शोर्ध्वम वनम व्रजेत, जीवन जो कलियुगा में 100 साल का जीवन व्यक्ति को दिया है तो उस 100 साल को शास्त्रों ने विभाजित किया है कि शुरुआत के जो 25 साल है उसको व्यक्ति को अध्ययन में लगाने चाहिए, गुरुकुल में जाकर गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 25 साल के बाद उसको क्या करना चाहिए, वैवाहिक जीवन को स्वीकार करना चाहिए, संतान उत्पत्ति आदि करनी चाहिए। 50 साल आ जाए तो व्यक्ति को पत्नी को लेकर तीर्थों में निकलना चाहिए, जिसको वानप्रस्थ कहा गया है। पहला जीवन है 25 साल का ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जैसे ही उसके घर में बच्चे बड़े हो जाए, वो जिम्मेदारी संभाल ले, उसी क्षण अपने आप को थोड़ा मुक्त कर देना चाहिए और उसको आध्यात्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन का जो सूर्य है वो अभी अस्त होने वाला है। कभी सूर्य रहा है, अस्त होता है कि नहीं होता? हाँ, तो हमारे जीवन का सूरज तो उदित हो गया है लेकिन उसका अस्त होना निश्चित है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं इस चीज को हमें सीखना चाहिए, बहुत सरल है, लेकिन हम इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हम जीवन यापन करेंगे उसी प्रकार की जो चेतना है, उसी प्रकार की मनोवृत्ति हमारे अंतिम समय में भी रहेगी, बदल नहीं सकती। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये अभी नहीं, ये बुढ़ापे में करूंगा ये सब चीजें, लेकिन बहुत कठिन है क्योंकि आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त इस चीज में इतना रंग जाता है कि उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। एक साधु थे जो एक गांव में गए तो वहां एक व्यक्ति मिला, तो वो काफी बड़ा उनका बिजनेस था, तो उसके 2 बड़े बच्चे थे। उन्होंने कहा, महाराज महाशय साधु, आप तो तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं, मेरे पिताजी को भी ले जाइए, अभी इन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया, लगता है कि नहीं, थोड़ा भी पिताजी को थोड़ा फ्री करते हैं, वो जाए जरा तीर्थ यात्रा करे, भ्रमण करे, दर्शन करे, स्नान आदि करे, आनंद उठाए जीवन का, कब तक ये पड़े रहेंगे। इन्होंने कहा आप ले जाइए इनको और इनमें थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। उन्होंने कहा ले चलता हूं। साधु का जीवन क्या है, बहता पानी, पानी जिस प्रकार से बहता है उसका वैसे जीवन है, इसलिए शुद्ध बना रहता है। तो इसी कारण से जब वो ले गए, कई स्थानों में भ्रमण किया उस साधु के साथ उस व्यक्ति ने, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आ रहा था, वापस आ गया। साधु ने कहा कि ये बहुत कठिन है इस व्यक्ति को परिवर्तन लाना, भगवान के प्रति इसका बिल्कुल रुचि नहीं विकसित हो रहा है, जागृति नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वापस उनका उनके बेटों के पास कहा कि इसको आप रख लीजिए आपके पिताजी को, और मुझसे हो नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, आखिरी ट्राई करो, आप ले जाइए इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ले चलते हैं। तो फिर से वो भ्रमण करने लगे, करते करते त्रिवेणी प्रयाग आदि में स्नान करके वो बनारस काशी गए। काशी जब गए, काशी विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है, वहां उन्होंने दर्शन किया और वह साधु सब गंगा स्नान की ओर निकले, तो वहां जैसे ये व्यक्ति जा रहा था उस साधु के साथ, दूर से ही एक दृश्य को देखकर उस व्यक्ति ने रोना शुरू कर दिया। साधु ने कहा मेरा जीवन सफल हो गया, इस व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ गया, भगवान के लिए क्या हुआ, रो पड़ा। हम भौतिक चीजों के लिए रोते हैं, रोज रोते हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते, रोते कि नहीं? बच्चों के तो आंसू दिखते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है उसमें बहुत बड़ा रोना है, कष्ट है, विपदा है, दुख आदि है। फिर रोने लगा साधु, तो बहुत खुश हो गए और साधु ने कहा कि क्या, क्यों रो रहे हो आप? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे यदि पता चलता मेरे जीवन में वो कहां से गुजर रहे थे, स्मशान भूमि के पास से गुजर रहे थे। उसने कहा कि मैं यदि इस चीज के लिए, ये चीज का मुझे पता होता कि लकड़ी का इतना बड़ा बिजनेस है, हाँ, तो मैं अपना कपड़े का धंधा नहीं करता। क्या देखा वहां काशी विश्वनाथ में, बहुत बड़ा स्मशान भूमि है जहां कितने सारा लकड़ी डला हुआ है। साधु ने कहा इसका परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, उस प्रकार की स्थिति है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं अभी अपनी युवा अवस्था में या अभी सब ठीक है तो अभी क्यों ये भगवान के बारे में भजन करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना ये क्यों आवश्यक है? ये सब चीजें तो बाद में देखी जा सकती है। जनरली क्या है, यही हमारी समझ है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए शास्त्र इस चीज की हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए ये भगवद गीता का उपदेश हमें प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, भगवद गीता का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जो भी व्यक्ति उस कैटेगरी में आया है, हर एक व्यक्ति के लिए और उतना ही एप्लीकेबल है, चाहे वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, वर्कर है, हाउसवाइफ है, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए भगवद गीता का यह संदेश बहुत ही अधिक महत्व रखता है। तो जैसे मैंने कहा पहली धारणा यही है कि क्यों हम नहीं चाहते ये सब चीजें लाइफ में, सोचते कि अभी क्यों, अभी तो बहुत देर है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ मेरा जीवन। हम हर समय क्या सोचते हैं, मेरा जीवन शुरुआत ही नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको सूर्यास्त कब होने वाला है। इसी कारण से धर्मराज, युधिष्ठिर और पांडवों को यह प्रश्न पूछा गया था जब वो लोग वनवास में थे, तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगी, उन्होंने कहा हे पतिदेव आप मेरे लिए पानी ले आइए। तो ये लोग गए, युधिष्ठिर ने कहा नकुल सहदेव तुम जाओ नजदीकी जलाशय है वहां से पानी ले आओ। तो पानी लाने गए वहां, तो वहां यक्ष, एक पेड़ के ऊपर जो यक्ष है, कुबेर के अनुचर होते हैं, वो बैठा था। यक्ष ने पूछा कि हे नकुल सहदेव तुम जल लेने से पहले क्या करो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, उस प्रश्न का उत्तर दो, यदि बिना उत्तर दे आप यदि जल का पान करते हो तो तुम मूर्छित हो जाओगे, शरीर का त्याग करना पड़ेगा। ठीक, नहीं मैं नहीं मानता, नहीं जैसे हम भी रेडिकुलस हो जाते हैं लाइफ में, कई कौन इसको स्वीकार करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गया जैसे पानी लिया पिया तो उसे क्षण मूर्छित होकर वहां गिर पड़ा। तो ये सब वेट कर रहे थे कि अभी तक ये नकुल सहदेव आए नहीं, फिर भीम को भेजा उनकी भी वही स्थिति हो गई, अर्जुन को भेजा अर्जुन की भी वही स्थिति हो गई, अर्जुन भी मना कर रहे थे। फिर फाइनली युधिष्ठिर महाराज गए जल लाने के लिए कि मेरे चारों भाई गए हैं और अभी तक वो वापस ना आए, क्या कारण है? तो फिर जब युधिष्ठिर महाराज गए तो उन्होंने देखा वो जो यक्ष है वो, उसने युधिष्ठिर महाराज को भी वही कहा कि मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो तब तुम जल लोगे तो उचित है, अन्यथा अनुचित है, जो स्थिति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही स्थिति तुम्हारी भी होगी। तो इन्होंने कहा इसलिए तो धर्मम धर्मराज कहा जाता है, उनमें सहनशीलता है, हाँ सब प्रकार के गुणों से भरे हुए युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को और ने 100 प्रश्न पूछे जो महाभारत नाम का जो ग्रंथ है उसमें आता है। महाभारत 100,000 श्लोकों से भरा हुआ है, उसमें से 700 श्लोकों को अलग निकालते तो वो क्या है, भगवत गीता है। महाभारत के बीच में हमें भगवत गीता मिलती है। तो जब उनको प्रश्न पूछा किम आश्चर्य, क्या प्रश्न था, किम आश्चर्य, ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्यदायक वस्तु या चीज क्या है, क्या चीज सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। हमें तो केवल स्कूल से पता है 7 वंडर्स, ताजमहल एक आश्चर्य है, ये सब चीजें हमें पता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्रदान की उनके उस उत्तर से। उन्होंने कहा अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्तावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम्। उन्होंने कहा अहनी अहनी भूतानि, भूतानि मीन्स जीव, अहनी अहनी मीन्स दिन रात जा रहे हैं, गच्छन्ति यम आलया, कि रोज हम अपने हमारे आंखों से देखते हैं अनुभव करते कि रोज हजारों हजारों जो जीव हैं शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, यम के लोग जा रहे हैं, यमालय जा रहे हैं। रोज टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, हाँ तो ये सारे न्यूज ज्यादा क्या होती है, न्यूज तो यही होती है ज्यादातर न्यूज। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति ये रोज देख रहा है, अनुभव कर रहा है, हाँ लेकिन जो बचे हुए हैं शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम, कहते कि जो बचे हुए हैं ना उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, लगता है कि नहीं लगता, हम सबको, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो अभी लंबे समय के लिए यहाँ नियुक्त किया गया हूं। जैसे किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, एमएलए आदि या कुछ, तो उनको लगता है कि मैं 5,000 साल मीन 5,000 साल के लिए हूं, लेकिन उनको पता नहीं आगे क्या आने वाला है, फिर से इलेक्शन आने वाले हैं। तो उसी प्रकार से जो बचे हुए लोग हैं, जीव हैं, वो सोचते हैं, युधिष्ठिर ने कहा कि उनको लगता है कि मैं परमानेंट यहाँ हूं, मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ परमानेंट निवास करने के लिए आया, और इसी को ही भ्रम या मोह या माया कहा गया है। इसी कारण से ये जो शास्त्र है, भगवत ज्ञान है, क्या हमारी आंखों को खोलता है और लाइफ में नया प्रकाश लाता है जीव जीने के लिए, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग कहा गया है। इस प्रकार से पहली गलत धारणा तो यही है भगवत गीता या इनके संदेश को ना स्वीकारने की, कि व्यक्ति सोचता है कि ये रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, अभी इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना जल्दबाजी क्यों। और सेकंड क्या है, व्यक्ति सोचता है, उसको भय होता है कि अरे ये भगवत भक्ति को, भगवत गीता इनको समझने आदि से क्या करना होगा, वो भयभीत होता है कि सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि अंतिम समय में हमें क्या त्यागना पड़ेगा, शरीर, जिससे हम इतना अधिक प्रेम रखते हैं, रखते कि नहीं, इस संसार में व्यक्ति किसी चीज से सर्वाधिक प्रीति या प्रेम रखता है तो वो अपने आप से और अपने शरीर से। क्यों रखता है, क्योंकि भगवान का अंश हमारे शरीर में है, और वो कौन है, हम हैं, खुद आत्मा है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, वो सनातन शाश्वत इटर्नल मेरा अंश है आत्मा, जो ये शरीर से अभिन्न है, अलग है, और हम आत्मा है, मेरी आत्मा नहीं, हम कौन है, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये भगवत गीता की पहली शिक्षा है। हम डिफरेंट शिक्षा भगवत गीता में आती है, तो भगवत गीता का सबसे पहला टीचिंग कुछ है तो ये सिखाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप शरीर से अलग हो, आप आत्मा हो। इसलिए हमारी ये दूसरी गलत धारणा है आध्यात्मिक जीवन को, भगवत गीता या भगवत सेवा को न स्वीकारने की लाइफ में क्या है, कि हमें भय है। किस चीज का भय है, त्यागने का, छोड़ने का, लगेगा छूट जाएगी चीजें, त्यागनी पड़ेगी, नहीं, भगवत गीता इसके लिए नहीं बोली गई। भय हाँ हमें बना रहता है, किसी फैमिली में भी देखा जाए कोई जो पति है वो भक्ति में लग जाए, थोड़ा सा भजन करने लगे, हाँ पत्नी डरने लगती है, हाँ बुरा मत माने, हाँ वो लगता है कि अरे क्या हो गया, ये तो अभी इनके कुछ अलग अलग ही नजर आ रहे हैं, इनके क्या कहते तार तोड़ इशारे समथिंग, हाँ तो भय है, कौन भयभीत नहीं है संसार में। हम श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक बहुत अच्छा एक स्टोरी सुनाया करते थे कि किस प्रकार से परिवार में भी भय है, पत्नी को भी लगता है कि पति को संन्यास ना ले, भगवत गीता पढ़ेगा तो क्या लेगा, संन्यास ना ले, चला ना जाए किसी साधु के पीछे, मंदिर ना चला जाए, वृंदावन ना चला जाए, भय है। हर कोई व्यक्ति भयभीत है और ये भौतिक संसार का ये नेचर है, स्वभाव है कि यहां बिना फियर बिना भय के आप नहीं जी सकते। लाइट चली जाए पूरे दिन भयभीत रहते हैं हम लोग, कितना गाड़ी क्रॉस करते रोड तभी भी भयभीत है, बच्चा स्कूल गया जब तक नहीं आता तब तक माँ भयभीत रहती है सही आएगा कि नहीं आएगा, मतलब भय के बिना लाइफ नहीं है, हर समय हर क्षण हर रोज भय से पूर्ण है। तो एक बार एक फैमिली था जिनके पति भक्ति कर रहे थे, अब ये पत्नी को लगता था कि हमेशा क्या हो जाता है, हाँ ये बड़ा करता रहता है साधुओं का सेवा आदि, हाँ भजन पूजन करता है बहुत हो गया, इनको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों से अलग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अलग, इतनी सोचता नहीं गई, बीच में एक रुकावट डालता हूँ। तभी वो बेचारे ऑफिस चले गए थे और एक दिन उनके घर में तीन साधु आ गए, उन्होंने कहा वो प्रभु जी है घर में, पत्नी अकेले थी और पत्नी को साधुओं का बिल्कुल गुस्सा आ जाता था, ये लोग मेरे पति को फुसलाने आ जाते हैं, हाँ इनको कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, तब ये टेंशन में आते थे हमेशा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ये ऑफिस चले गए तो पत्नी घर में थी, उन्होंने कहा भी आए तो इनको भगा तो नहीं सकते, ठीक है बैठिए थोड़ा सा पानी दीजिए, पानी दिया और उसने क्या किया, अपने किचन से जो चपाती उठाने के लिए क्या होता है चिमटा को ले लिया, चिमटा लिया और साधु को दिखाई देना चाहिए इस प्रकार उसने उस चिमटे को लिया और जहां सोफा वगैरह होता है बैठने का, तो साधु अपने एक सोफे में बैठे थे तीनों, आगे सामने जो सोफा था उसका कुशन के नीचे चिमटे को रखने लगे ताकि दिखाई दे इनको क्या रख रही है जानबूझ के। साधु ने पूछा क्या है, माता जी आप चिमटा क्यों रख रहे उसके नीचे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मेरे पति हैं वो साधु वैसे नए आए थे वहां, मेरे जो पति हैं वो क्या करते जब भी साधु आ जाते हैं ये तुरंत किचन में जाते हैं और चिमटा ले लेते हैं और गैस के ऊपर उसको गर्म कर देते पूरा लाल, और जो साधु आते हैं उनके पीछे भागते हैं उनकी नाक करने के लिए। साधुओं ने सोचा यार ये क्या है, उसने कहा अभी आने वाले घर, हाँ ये चाहते थे कि उनसे मिले ही ना, भाग जाए छुट्टी हो जाए उनसे, हाँ तो फिर अभी ये पहुंची गए उसी समय तो देखा कि जैसे इस लेडी ने इस माता ने कहा कि ऐसा करते हैं तो वो भागने लगी। वो साधु ने सोचा कि निको चलो अभी हमारी नाक को बचाना है भागो यहां से, तो वो साधु थोड़े बाहर जाते कि नहीं तो वो आ गए अपनी कार से पूछने क्या साधु लोग आए थे आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया मुझे मैं मिल लेता उनसे। तो उसने कहा कि वो साधु लोग है ना कुछ भी मांगते रहते वो अभी देखो ये चिमटा मांग रहे थे क्या मांग रहे थे चिमटा। उसने कहा क्या चीज है छोटी सी चीज नहीं दे सकते उन्होंने हमारा कुछ घर आदि तो नहीं मांगा ना एक चिमटा मांग लिया छोटा सा और आप उसको दे नहीं रही हो दे देना चाहिए छोटी सी वस्तु। तो उसने क्या किया नहीं मैं देता हूं अभी उनको इसने चिमटा दिया उनके पीछे भागने लगा कि आप ये ले भाग रहा था और साधु देख रहे थे कि सही में चिमटा लेके भाग रहा है हमारी नाक को पकड़ने वाला साधु भी दौड़ रहे थे तेजी से। हाँ तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर समय हम इस जगत पे भयभीत रहते हैं और इसी कारण से हम आध्यात्मिक जीवन या भक्ति आदि को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते और हर समय हमें लगता है कि भक्ति को स्वीकार करना जीवन में इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वास्तव में हमें केवल एक ही चीज को अपने जीवन में लाना है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या लाना है? कृष्ण या भगवान को हमें जीवन में लाना है। बल्कि भगवत गीता इसीलिए बोली गई है, केवल इसी के लिए। छोड़ो मत, क्या करो, जोड़ो। अर्जुन क्या कर रहा था शुरुआत में? अर्जुन ने कहा भिक्षम अपि ह लोके, मैं तो भिक्षा मांग के जीने के लिए तैयार हूं। ऐसे थे अर्जुन वगैरह, इनका कैरेक्टर, इतने उन्नत चरित्रवान व्यक्ति थे पांडव। उन्होंने कहा ये थोड़े से राज्य आदि के लिए मैं इन सब से रक्त रक्तपात करूंगा, इससे अच्छा है मैं भिक्षा मांग के जीता हूं। इस प्रकार से वो छोड़ने के लिए तैयार थे। भगवान ने भगवत गीता बोली क्या करने के लिए, कार्य करने के लिए। वो अपना कार्य छोड़कर जाना चाह रहा था, अपना बिजनेस छोड़ना चाह रहा था, सब कुछ त्याग करना चाह रहा था। भगवान ने डांट लगाया। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, कृष्ण बोलना शुरू नहीं करते, और जैसे उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया कृष्ण ने, उसी समय उनको कहा अशोचानन्व शोचस्व प्रज्ञावादांश भाससे। कहा कि अर्जुन तुम तो बहुत पंडित जैसी बातें कर रहे हो, तुम पंडित के समान बोल रहे हो लेकिन वास्तव में तुम्हें ज्ञान नहीं है। जो वो वही व्यक्ति मूर्ख है, जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो, ये व्यर्थ है, तुम पंडित नहीं हो। पंडित कान व्यर्थ की चीजों के लिए शोक नहीं करते। तो वास्तव में भगवद गीता बोली गई है कि जाओ अर्जुन, क्या करो, तुम अपने ड्यूटीज, तुम्हारे जो कर्तव्य है उसको निभाओ, लेकिन किस प्रकार से निभाओ उसकी कला भगवद गीता में है। इसलिए लोग जनरली कहते कर्म ही पूजा है, सुना है आपने? नहीं, शास्त्र कहते कर्म ही पूजा नहीं, कर्म एक गधा भी कर रहा है। केवल मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए नहीं दिया, ऐसे कार्य करने के लिए दिया है जिन कार्यों से कार्यों को करते हुए अब भगवान की सेवा कर सको। अब सोचो भगवान ने यही कहा, मया अनुस्मर युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धिर। भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम युद्ध करो लेकिन कैसे, आपका जो बुद्धि है वो मुझे अर्पित करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए। इस प्रकार से चाहे कोई भी कार्य है, चाहे हम ऑफ बिजनेस है, घर के कार्य है, भगवान का स्मरण करते हुए हम कर रहे हैं तो वो कार्य भगवत भक्ति है। कुकिंग कर रहे हैं, जैसे माताएं कुकिंग करती है घर में, तो कुकिंग करती है तो उनको ये भावना होनी चाहिए कि ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, भगवान के लिए। कुकिंग होते ही उसको अर्पित करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए हम गोपाल जी को, और फिर परिवार के लोगों को खाने के लिए देना चाहिए। अन्यथा गीता भगवान कहते हैं कि पचन्ति आत्म कारणात्, जो लोग केवल अपने जीवा की तुष्टि के लिए बनाकर खाते हैं अर्जुन, वो पाप खा रहे हैं बिना मुझे अर्पित किए। तो सोचिए कितना सरल है, कार्य वही करो, केवल क्या करो, कृष्ण से कनेक्ट करो, भगवान से क्या करो, कनेक्ट करो, सिंपल। यही जीवन तो पांडवों का था। पांडवों का जीवन युधिष्ठिर महाराज के समान ऐश्वर्य किसी के पास था? अभी है किसी के पास उतना ऐश्वर्य? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में भगवान कृष्ण को स्थापित किया था, भगवान कृष्ण को केंद्र बनाया था। ये उनकी महानता थी, ये उनकी सिद्धि थी एक प्रकार से। तो इसलिए भगवद गीता हमें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश हमें प्रदान करती है। तो भगवद गीता का एक श्लोक में पढ़ता हूँ, भगवद गीता के 8वें अध्याय में आता है, और उस श्लोक इस प्रकार से है, उसका अनुवाद और श्लोक आप ध्यान से सुन सकते कुछ समय के लिए। तो कृष्ण कहते हैं माम प्रत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमांगता। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उसका तात्पर्य है चूंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी भी वापस आना नहीं चाहता। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, माम प्रत्यह पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवत गीता का हर जो श्लोक है बहुत गहरा है, और भगवत गीता को समझने किस प्रकार से समझना चाहिए, भगवत गीता को जीवन में भक्तों की सहायता से हमें समझना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता समझना, किसी को संस्कृत आदि का ज्ञान है तो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता का उपदेश दिया भगवान ने? अर्जुन क्या कोई संस्कृत का स्कॉलर पंडित था, कोई महान वैरागी साधु त्यागी तपस्वी कोई था, या हिमालय में कोई तप कर रहा था और भगवान गया, अरे अरे उठो मैं तुम्हें गीता सुनाता हूं। किसको भगवत गीता का उपदेश दिया? सर्व सामान्य सारे कार्य में जो लिप्त है, गृहस्थ भक्त है, गृहस्थ जिनकी 3 पत्नियां हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने उपदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम आगे चलकर क्या कहेंगे भागे ना। किसी भगवान हिमालय में किसी योगी त्यागी को गीता देते तो हम कहते गीता तो उन्हीं के लिए है। हाँ, लेकिन अर्जुन जिनके पास सब चीजें थी, सारे कार्य में मग्न थे, उनको भगवत गीता का भगवान ने उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि भक्तों सी में सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य जीवन का हमें प्रदान कर रहा हूं। क्यों अर्जुन? क्योंकि तुम भक्तों सी में, तुम मेरे भक्त हो। और दूसरा गुण क्या था? क्वालिफिकेशन सखा मित्र थे उनके। तो इसी प्रकार से भगवत गीता केवल भगवान के जो भक्त है हाँ उनके सहायता से ही वास्तव में हम जान सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में हम भगवान कह रहे हैं, माम प्रत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस चीज में भगवान, ये बहुत स्पेशल श्लोक है भगवत गीता का। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, दो चीजें कहते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, या जीवन की परम सिद्धि, सिद्धि का मतलब है परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? लाइफ का परफेक्शन, क्या चीज करने से हमारा लाइफ परफेक्ट हो सकता है या जीवन में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज भगवान इस श्लोक में कहते हैं, दुखालय और शाश्वतम, इस भौतिक जगत के नेचर या स्वभाव या धर्म का वर्णन करते हैं। ये भौतिक जगत का क्या एक्टिविटी क्या है, किस चीज से भरा हुआ है? तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति माम उपेत्य पुनर्जन्म, भगवान कहते मुझे प्राप्त करने से कोई व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त करेगा? पुनः जन्म नहीं प्राप्त करेगा। आप कहेंगे किसने देखा पुनर्जन्म? देखा है क्या? हम सोचते किसने देखा पुनर्जन्म? अभी यह जन्म मिला है, इसे में हमें थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, सब कुछ करने दीजिए, अगला जन्म किसने देखा? हाँ, एक एक, एक मुनि थे जिनका नाम था चार्वाक। क्या नाम था? चार्वाक मुनि। तो वो कहा करते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवित सुखम जीवित। उनका ये फिलोसॉफी था, सिद्धांत था, कि कहते कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऋणम कृत्वा कर्जा ले ले, लेकिन क्या पीना चाहिए? घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से वो कहा करते थे। ये तो उस समय की बात है, उस समय भौतिक आनंद की जो सर्वोच्च सीमा थी वो यही थी, घी पीना, घी में खाना। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत, जब तक जी रहे वो सुख से जियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः कुतः पुनः पुनरागमनं भवेत। किसने देखा ये पुनर्जन्म होगा? हाँ, तो वास्तव में हम भूल गए कि हम इसी शरीर में कितने हम बदल गए हैं। पुनर्जन्म हर साइंस कहता है, हर 7 साल में हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं चेंज हो जाते पूर्ण रूप से। पुनर्जन्म का मतलब है नया बॉडी, जिसको गीता में कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार से कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको हम त्यागते और नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जब ये शरीर खराब होने लगता है, पुराना होने लगता है, जिसका कोई यूज नहीं है, तो इस शरीर को क्या करना होता है अर्जुन? चेंज करना होता है, देहांतर प्राप्ति चेंज करना होता है, और उसी को क्या कहते हैं? पुनर्जन्म। हमने देखते हैं बच्चा का शरीर था, हम सब छोटे थे कि नहीं, वो कहां गया वो शरीर? माँ के पेट इतने सम मींस उसका साइज है, उसमें हम थे, इतने छोटा सा शरीर, अभी टोटली चेंज हो गया है। हाँ, छह प्रकार के चेंजेस भगवत गीता कहते क्या आते हैं हमारे शरीर में। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थिर हो जाता है, उससे नई चीजें उत्पन्न करता है बच्चे आदि, फिर क्षय होने लगता है और फाइनली खत्म हो जाता है। सिक्स चेंजेस भगवत गीता कहती है। तो इस प्रकार से जो शरीर, हाँ, भगवान ने कहा कि आप यदि मुझे प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता ना मृत्यु होता है, इसलिए भगवान ने कहा न जायते ना मृयते, ना जन्म होता है मरता है, आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। लेकिन आत्मा को देखने के लिए भी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। हवा को नहीं देख पाते, हमारे पीछे क्या हो रहा है, अपने आईलिड्स को नहीं देख पाते हम, तो क्या क्वालिफिकेशन है कि आत्मा जो इतना सूक्ष्म है, कितना भगवान कहते बालाग्र शत भागश शतधा कल्पितश्च च, कि बाल के 10,000 अग्र जो भाग है बाल का, उसको 10,000 बाल काटो, छोटा करो, बिल्कुल जो पॉइंट है उसका फ्रंट, और जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज है। कोई ऐसा मशीन है जो हम उसको देख सकते? नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा, क्योंकि भौतिक नहीं है, इस भौतिक जगत का पदार्थ नहीं है, आत्मा क्या है? आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक जगत की चीज है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत दो चीजों से भरा पड़ा है। कौन सी दो चीजें हैं? हम भौतिक जगत का स्वभाव है, दो चीजों से बना हुआ है ये जो जगत, जिस जगत में हम रह रहे हैं। एक पहला उसका नेचर है दुखालय, फुल ऑफ मिजरीज, दुख आलय, जिस प्रकार से हिमालय ग्रंथालय, उसी प्रकार से क्या है, क्या है? दुख आलय, दुखालय। और दूसरा भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि अशाश्वतम, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कोई वस्तु। हम ही टेम्पररी जीवन के लिए आए हैं, लेकिन हमारे जो डिजायर है, आकांक्षा है कि परमानेंट रहने का हमारा भाव है। तो ये जगत उन जीवों के लिए क्रिएट किया जाता है, बंच ऑफ जीवास जिसको कहते हैं, कि बंच है ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का जो भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते, स्वतंत्र, जिसको स्वतंत्र भाव कहा गया है। और वो सोचते हैं क्यों भगवत सेवा की जाए, उनसे अलग होकर भी हम सुखी रह सकते हैं। भगवान कहते ठीक है, ये भौतिक जगत है कितना? बहुत छोटा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डस्टबिन शास्त्र कहते भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत दो जगत है कि नहीं? आध्यात्मिक जगत जो हमारे दृष्टि से परे है, और ये भौतिक जगत जिसको हम पूर्ण रूप से जान भी नहीं पाते, हमारा साइंस। तो इस प्रकार से ये जो जगत है उन जीवों के लिए बनाया जाता है जो जीव भगवान से अलग होकर, सेपरेट होकर एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान कहते ठीक है, जाओ, ट्राई योर बेस्ट, अब ट्राई करो। तो हम देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ट्राई करता है, हर पिता, हर जो फादर है वो पूरा जोश लगाता है अपने लाइफ में सुखी होने का। और जब उसके बच्चे को पढ़ाई, जैसे कोई कोई फादर डॉक्टर है या कोई एडवोकेट है, तो वो सोचता है नहीं मेरा बेटा ना दूसरे लाइन में चला जाए, वहां ना तो उससे बेटर हो सकता है उसका लाइफ, मेरा लाइफ बेटर नहीं हुआ। क्योंकि भगवान कहते अरे बाबा ये भौतिक जगत है ही ऐसे, मटेरियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करो, समझो इसके नेचर को। तो जिस प्रकार से हम अलग होकर, इस भगवान से अलग होकर रहना चाहते हैं, तो उन जीवों के लिए भगवान फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जगत बनाते हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट एक जेल बनाती है ऐसे जीवों के लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स कानून आदि को फॉलो नहीं करना चाहते, लॉज को ब्रेक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जेल बनाई जाती है। उसी प्रकार से भगवान शास्त्र कहते हैं जेल उन जीवों के लिए जो भगवान से अलग रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक माँ है वो किचन में अपना कुकिंग कर रही है, तो छोटे छोटे बच्चे आके नहीं नहीं माँ मैं चपाती भी बनाऊंगी, वो परेशान करते हैं। माँ कहती है ठीक है, माँ दूसरे दिन मार्केट जाती है और छोटे छोटे सारी चीजें खरीदती है, गैस भी है, सिलेंडर भी है और बेलन और सब कुछ उसका, कहते कि आप क्या करो एक कोने में बना, वो कुछ बना पाती है, भूख लगती तो किसके पास आती है, माँ के पास, सारे इंस्ट्रूमेंट उसके पास है। उसी प्रकार से हम भगवान से अलग होकर हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं एंजॉय करने के, आनंद प्राप्ति करने के, लेकिन वो कभी भी हमें संतुष्टि नहीं देते। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप समंदर में हो और वहां पानी है और आपको बहुत प्यास लगी है, तो लेकिन क्या वो पानी यूजफुल है आपके लिए, वो पानी पी सकते हैं आप, नहीं। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, हम अपने जीवन में हर रोज चेंज करना चाहते हैं। आनंद का मतलब क्या है लाइफ में, चेंजिंग, चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स, हमारी वस्तुओं को चेंज कर रहे हैं, हम घर को चेंज कर रहे हैं, फर्नीचर चेंज कर रहे हैं, गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, मोबाइल चेंज कर रहे हैं, हाँ हमारे जीवन के रिलेशंस को व्यक्ति चेंज कर रहा है, तो कितना चेंज कर रहा है, जीवन के अंत समय तक बस चेंज ही करते जा रहा है। किस चीज के लिए, एक ही होप है, क्या सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, लेकिन भगवद गीता कहते हैं इम्पॉसिबल, ये भौतिक चीजें हमें संतुष्टि नहीं दे सकती जब तक हम अपने जीवन में भगवद गीता या भगवान को नहीं लाते प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके। इसलिए हम देखते हैं हजारों हजारों ऐसे उदाहरण है इस जगत में कि कौन व्यक्ति है जिसके पास परमानेंट आनंद है, केवल होप है व्यक्ति को केवल कि हाँ सुखी हो जाऊंगा। शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धायावत ग्रहित्वा दंडम। अंगम गलितम, व्यक्ति का अंग, अंग मीन्स बॉडी, गलने लगता है, गलना मीन्स ओल्ड एज, बुढ़ापा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, पलितम मीन्स जो सर है उसके बाल अपने आप क्या हो जाते बुढ़ापे में निकलने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम, सारे दांत हमारे युवा अवस्था में दांत भरे रहते हैं, लेकिन जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो सारे दांत क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं। दशना विहीनम जातम तुंडम, दांत खाली हो जाते हैं मुंह। वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम, और वृद्धा अवस्था आती है तो हम दो पांव हमारे लिए इनफ नहीं है, हम और एक चीज का आश्रय लेते दंडे का। वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी ये आशा हृदय से नहीं जाती कि मुझे सुख मिलने वाला है। इसलिए लाइफ बहुत सरल है, केवल हम भगवत संदेश को स्वीकारते हैं, समझते हैं और सिंप्लिसिटी के साथ अप्लाई करते हैं, जीवन बहुत सरल हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन को गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहा है, इसलिए उसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख आदि नहीं है। हाँ, क्योंकि इस जगत का जो सुख है, हाँ, जिसको कहा गया है कोटेड या इनबिल्ट होता है, जैसे पहले मोबाइल आते थे जिसमें एंटेना हुआ करता था, बिल्कुल अर्ली समय में इतना लंबा एंटेना था, लेकिन अभी एंटेना क्या है, इनबिल्ट, इनबिल्ट है। उसी प्रकार से अभी इस भौतिक जगत में हर छोटे से सुख के साथ इनबिल्ट क्या है, दुख है, है कि नहीं? कौन सी ऐसी चीज है जो परेशानी के साथ नहीं जुड़ी हुई, हर एक जो चीज है हाँ वो जुड़ी हुई है। इस प्रकार से शास्त्र हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं, भगवद गीता ये हमें शिक्षा देती है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि एक ही होप व्यक्ति को रखना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन में जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकता हूँ, किस प्रकार से अपना जो जीवन है धन्य कर सकता हूँ, क्योंकि ये जीवन हमें इसी चीज के लिए दिया गया है। लेकिन व्यक्ति भगवत संदेश को ना स्वीकार करके भगवत सेवा को दूर करते हुए वो जीना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में फिर आप देखते हैं, आप देखो जो अमेरिकन से यूरोपियन शादी है उनके पास जो ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं, भारत में तो नगण्य है, वहाँ के रोड्स आदि हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें आदि हैं, फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है। मॉल का कल्चर तो भारत में आ गया है, मॉल कल्चर वहां तो कब से है। तो व्यक्ति सोचता है कि वो लोग ज्यादा सुखी है, लेकिन नहीं, सबसे अधिक सुसाइड करने वाले वही लोग हैं उनके लाइफ में। तो भौतिक चीजें हमें सुख नहीं प्रदान कर सकती, एक झूठी आशा हमारे जीवन में रख सकती है, लेकिन इन चीजों के साथ हमें भगवान को अपने जीवन में रखना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य को होना कोई गलत नहीं है, सुख सुविधा आदि को, जिस प्रकार से पांडवों के पास था, सारा संपन्नता था उनके पास, लेकिन उनके लाइफ में कौन थे, कौन थे उनके लाइफ में, कृष्ण थे, भगवान थे। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, कि जो उपयोगिता है वही सिद्धांत है। इसलिए भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं माम प्रत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मना संसिद्धिम परमाम गतः, कि व्यक्ति मुझे प्राप्त कर पाता है तो वास्तव में फिर इस भौतिक जगत में हम वापस नहीं आता। तो जीवन की सिद्धि क्या है, परफेक्शन क्या है, पूर्णता क्या है, शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत समय में हमारे जीवा में किसका नाम आ जाए, भगवान का नाम आ जाए। महात्मा गांधी ने भी क्या बोला था आखिरी में, हे राम। तो मतलब जीवन की चाहे जो चीजें हो वो हमें सहायता नहीं दे सकती। एवं जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो पूरे विश्व विजेता था, सारे विश्व को जीता उसने, और जब उसने अपना शरीर त्यागने से पहले उसके लोगों को उसने कहा, जब मैं मरूंगा तो मेरे बॉडी को आप कैसे दफनाओ, मेरे दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, कि सारे जगत को यह मैसेज जाए कि मैं पूरा विश्व को जीत लिया फिर भी मैं कैसे गया वापस, खाली हाथ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इस प्रकार से सिद्धि यही है कि अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण करें। तो वो लेकिन इतना सरल नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि नहीं नहीं अभी मेरी यंग एज है, अभी क्या करना है प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति बहुत क्रूर है। तो व्यक्ति को भगवान ने गीता में कहा अभ्यास है न तू कहते, हे अर्जुन क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम के लिए। वो एग्जाम है शरीर को छोड़ना, जो इतना कष्टप्रद है, इसलिए लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं। तो वो सरल हो सकता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे इस जगत में भी हमने कई सारी एग्जाम्स दिए हैं, इस जगत में एग्जाम्स की हमें डेट पता होती है, डे हमें पता होता है, लेकिन आंसर पता नहीं होते, होते क्या नहीं पता पता, लेकिन ये जो फाइनल एग्जाम है उसका हमें डे पता नहीं है, टाइम पता नहीं है, लेकिन आंसर पता है। क्या है आंसर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तर पता है कि अंतिम समय में, और सबको ये पता है, सब बोलते रहते क्या करना है। कई बार व्यक्ति कहता है चलो ये सब चीजें छोड़नी है, मजाक मजाक में बोल ही देता है, नहीं मतलब कहने का तात्पर्य हर एक व्यक्ति को उत्तर पता है कि अंतिम समय में मुझे भगवान का नाम लेना है। तो वो एग्जाम तभी हम सफल हो सकते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास यही है। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशाम तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उस व्यक्ति के लिए बहुत सुलभ हूँ, सरल हूँ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप सब ने समय निकाला और इस सत्संग में भाग लिया, जहाँ भगवद गीता के संदेश को सुन पाए और साथ साथ हम भगवान नाम के कीर्तन में भाग ले पाए। इसलिए सिद्धि जीवन की तभी संभव है जब हम भगवान के नाम का अभ्यास करेंगे। इसलिए भगवद गीता में इसी चीज पर जोर दिया जाता है कि अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए पूरा दिन कि हमें भगवान का स्मरण हो। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए शास्त्र एक निर्देश देता है कि अपने फैमिली के साथ उसको समय को कैसे बांटना चाहिए, शास्त्र कहता है कि मॉर्निंग आवर्स, सुबह का समय व्यक्ति को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए देना चाहिए उठते ही, और 8-9 बजे के बाद जो समय है पूरे दिन में 8-10 घंटे उसको धन अर्जन करने के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है, जिम्मेदारी है धन अर्जन करे, फैमिली मेंटेन करने के लिए। और शाम का समय उसको परिवार के साथ बिताना चाहिए ताकि परिवार के लोगों का भी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़े, उनका रुचि बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपना लाइफ जीता है तो उसके जीवन में शांति और संपन्नता सरल है। लेकिन किसका जीवन है अभी ऐसा नहीं है, जीवन का जो शेड्यूल है पूरी तरह से खत्म है। इस प्रकार से भगवान नाम हमारे जीवन में आखिरी में तभी संभव हो सकता है जब हम इस अभी प्रैक्टिस करें। जैसे हम एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे उत्तराखंड में, तो किसी जगह हमें इनवाइट किया, तो वहां गए थे। वहां एक फैमिली था, तो उनके फादर ने शरीर छोड़ा था, तो सारे हम बहुत सारे भक्त ट्रैवलिंग में थे, जस्ट डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट कर रहे थे, आध्यात्मिक स्थानों में भ्रमण कर रहे थे। तो फैमिली ने इनवाइट किया, तो वहां गए, तो उन्होंने कहा आप सबको भोजन करना होगा हमारे यहाँ। तो सारे भक्त लोग जब बैठ गए तो वो लोग क्या कर रहे थे, सबको कोको कोला भी दे रहे थे। हमने कहा ये क्यों दे रहे हैं आप लोग कोको कोला, कहते हमारे पिताजी, हमने जब पूछा उनको कि वाई कोको कोला क्यों, तो उन्होंने कहा हमारे जो पिताजी हैं वो पूरे जीवन मग्न थे अपने सारे कार्यों में और भोला के भक्त थे। किसके भोला भक्त थे, भोला जी शिव जी के। तो जब इनका अंतिम समय आया, हम सारे बच्चे वहां थे, हमने कहा बापू भोला, वो क्या बोलो भोला, भोले का नाम तो आ जाए आपके मुंह में। लेकिन कहते कि हमारे पिताजी क्या बोल के चले गए, कोका कोला। तो इसलिए उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम आप सबको कोका कोला दे रहे हैं। हम हंस रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पूरे दिन कोका कोला की बोतलें उनके डेस्क पर पड़ी रहती। तो जिस प्रकार का हम अभ्यास करेंगे हम उसी प्रकार का ही अंतिम हमारा चिंतन होगा। इसलिए सरल विधि है, शास्त्र कहते हैं कि किस चीज का अभ्यास करो, भगवान के नामों का उच्चारण करने का अभ्यास करो। और ये बहुत सरल है, भगवान का स्मरण से सरल वस्तु नहीं है। तो भगवान के नामों का आप सबसे निवेदन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कौन सा मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कोई कहेगा कि आप हरे कृष्ण मंदिर से आए तो आप लोग क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे। ये हमारी चीज नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, एग्जैक्टली क्या शास्त्रों से हमें लेना चाहिए वो किसी को पता नहीं है। हाँ, भारत में खिचड़ी बन गई है, क्या बन गई है, खिचड़ी। तो कोई भी चीज हमें स्वीकार करनी है तो वो शास्त्र क्या कह रहे उसको समझते हुए लेना चाहिए। तो नारद ब्रह्मा जी के पास गए और कलयुग जब शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा कलयुग के लोग अल्प आयु के हैं, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़े करते रहते सदा, मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य हैं, ऐसे लोग क्या भगवान को जान सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा, कलि संतरण उपनिषद में ये वर्णन आता है, बहुत लंबा वर्णन है, जहां वो कहते हैं इति षोडशतम नामनाम कलि कल्मश नाशनम। ये जो 16 अक्षरों का भगवत नाम है ये कलयुग के सारे कल्मशों का नाश करने का सामर्थ्य रखता है। ना तो परतर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में इस चीज की गवेषणा वर्णन किया गया है। हाँ, तो उन्होंने पूछा कौन सा है वो नाम, तो फिर ब्रह्मा कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल, ये नाम तो हम बचपन से सुनते आए हर एक व्यक्ति, लेकिन ये शास्त्र से अनुमोदित है। कोई व्यक्ति इसका उच्चारण करता है जिसका लेते लाभ, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो अपने 70 साल की आयु में, उनके गुरु ने कहा कि तुम जब ये 22 साल के थे तो उनके गुरु सुभाष चंद्र बोस और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उनके गुरु ने कहा कि तुम अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हो तो क्यों नहीं इस नॉलेज को अमेरिका में प्रचार करते। तो वो गए और पूरे विश्व में जो भगवत ज्ञान है उसका उन्होंने प्रचार किया। तो आज पूरे विश्व में 700 से अधिक मंदिर हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओ वहां हरे कृष्ण टेम्पल्स है, चाहे वो चाइनीज है, निग्रोज है, अफ्रीकन्स है, यूरोपियंस है, वो लोग इसी प्रकार से जैसे हम बैठे हैं रोज कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वो परम संतुष्टि और समाधान अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारे विश्व में लोग भाग ले रहे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उसका आप जप किया करिए, कीर्तन कीजिए और समय निकाल कर भगवत गीता को पढ़िए। हरे कृष्णा। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई समीक्षा कमेंट आदि है, नहीं तो हम सब खड़े होकर कीर्तन करेंगे। तो आप सब खड़े हो सकते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं।